ओम शांति। आज की मुरली से बाबा हमें क्या बनाता है? बुद्धिमान। पहला शब्द नहीं बोलेंगे, बुद्धिमान बनाता है। बुद्धिमान की निशानी पवित्रता। बहुत गुह्य रहस्य है ये। दुनिया में बुद्धिमान अलग अलग फील्ड में अलग अलग तरह के होते हैं। कईयों का तो ऐसा है जितने बुद्धिमान उतने ही परेशान, क्योंकि ज्यादा सोचते हैं, हर बात में ज्यादा सोचते, ओवर थिंकिंग होती है। बाबा की बुद्धिमानी क्या बना दिया उसने हमें, बोलो। मास्टर ज्ञान सागर। लोग सोच भी नहीं सकते कि ये भी कुछ होता है क्या। संपूर्ण ज्ञान दे दिया, कुछ भी जानना शेष नहीं रहा है। हो गया ऐसा? या जानना है कुछ, मैं कौन हूं, कहां से आई, किसकी हूं, भगवान कौन है, कहां है, ये चीजें उलझी हुई संसार में। भगवान कौन है ये पता नहीं चला तो क्रिश्चियंस ने तो कह दिया है ही नहीं, छोड़ो झंझट। बहुत खेल बदल गया धर्मों में। बाबा ने कहा तुम्हें बहुत नशा रहना चाहिए, खुमारी होनी चाहिए, परम धाम से स्वयं भगवान आकर हमें पढ़ाते हैं। ये चीजें बहुत ही आत्मा को सुख देने वाली हैं। और जितना हमें नशा होता है, क्या होता है, उतना ही और खुशी भी। और एक बहुत बड़ा फायदा होता है, उस पर ध्यान देंगे आप और अपने नशे को बढ़ाएंगे। दुनिया में तो लोग नशा बढ़ाते रहते हैं ना, रोज आती है माताएं, मेरा बच्चा पहले कभी कभी शराब पीता था, अभी रोज पीता है, अभी दिन में दो बार पीता है, तो हम भी अपना नशा बढ़ाएं। नशा बढ़ाने से व्यर्थ संकल्प समाप्त हो जाते हैं, आत्मा में बल आ जाता है। अभी से हम सबको अपनी स्थिति ऐसी बनानी है, ध्यान देना इस बात पर और सब पुरुषार्थ करेंगे, ताकि देखने वालों को भी लगे कि कलयुग का इन पर कोई प्रभाव नहीं है, इनकी अलग दुनिया है, अलग चिंतन है, अलग स्थिति है, अलग इनके खजाने हैं, अलग इनकी प्राप्तियां हैं, ये सब को लगने लगे। दुनिया के प्रभाव से मुक्त चिंतन करना, कुमार भी सभी। इसके लिए ये जो मोबाइल की माया है, इससे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि जो कुछ आप देखेंगे उसका प्रभाव मन पर आएगा, मन पर बहुत बुरा असर डालेगा। कल की मुरली पे हम चर्चा करेंगे, आज की तो हमें केवल रिपीट करनी थी। ब्राह्मणों की दो सत्ताएं, धर्म सत्ता, राज को कुछ और कहा, स्वराज अधिकारी की सत्ता। यहां राज थोड़ा है ब्राह्मणों के पास, स्वराज अधिकारी की सत्ता। और जो स्वराज अधिकारी बन जाएंगे वे ही विश्व पर राज कर सकेंगे। बाबा ने इसमें अच्छी अच्छी बातें भी कही हैं मुरलियों में। दो चार पांच लोग इकट्ठे रहते हैं, कोई उनका इंचार्ज है, बाबा ने कहा तुम यदि अपने साथियों को संतुष्ट नहीं कर सके तो विश्व को संतुष्ट कैसे करोगे। है ना सोचने की बात, भाई कोई माताओं को गाइड करे, इधर बहुत जगह, पीछे वाले उठ के जल्दी आ जाओ जो बैठे हैं अभी, नहीं हिलो नहीं, उठो, उठाओ भाई, नहीं उठाओ, कोई मदद करो उठाने में, कोई बहादुर व्यक्ति हो, जल्दी जल्दी, इतनी देर नहीं, क्लास रुक गई आप दोनों के लिए, इधर आओ भाई, भाई आओ कोई। फिर माताएं आती रहेंगी, वहीं घुसती रहेंगी। उधर वाली माताओं को भी उठाओ, किनारे वालियों को, तुम कन्या हाँ उठो, तुम भी उठो और वो भी उठे, आओ इधर, कन्याएं आ जाओ, माताओं को तो भारी होता है उठना, थोड़ा कन्याएं आओ फटाफट और इधर बैठ जाओ अभी से, क्योंकि माताएं 9:30 बजे तक ही आती रहेंगी, पता है आपको। तो 2 सत्ताएं हमारे पास, धर्म की सत्ता का अर्थ है पवित्रता और सत्यता की शक्ति। बहुत गुह्य रहस्य है, भगवान के अलावा कोई नहीं कह सकता न जानता। धर्म, धर्म की पावर ही है पवित्रता में, और उसमें सत्यता कितनी है उसके ज्ञान में, इस चीज पे निर्भर करती है धर्म की शक्ति। तो बहुत सारे धर्म कमजोर पड़ गए हैं, पड़ गए हैं या पावरफुल हैं, नाम धर्म रह गया, धारणाएं खत्म हो गई, धर्म के नेताओं की धारणाएं भी लोप हो गई। बाबा ने सत्य धर्म की स्थापना की है आकर, तो पवित्रता और जिसमें जितनी पवित्रता उतनी ही उसमें धर्म की शक्ति है। बढ़ाएंगे सब अपनी प्योरिटी को, किसी का ब्रह्मचर्य भी अच्छा हो लेकिन अगर मन व्यर्थ में रहता है तो पवित्रता की शक्ति लोप हो जाती है, हल्की पवित्रता दिखाई देगी। भोले भाले लोग हैं बेचारे, पवित्र बन गए ठीक है, भोले। शक्ति, धर्म की शक्ति या सत्ता माना शक्ति, जैसे सतयुग में धर्म और राज दोनों किसके हाथ में होते हैं, कौन वो एक, नारायण। लक्ष्मी को थोड़ा पीछे रख दो, धर्म का हेड भी नारायण और राज का हेड भी लक्ष्मी नारायण, धर्म का हेड भी वही है। द्वापर से क्या हुआ, पैगंबर आए, धर्म स्थापना हुई, धर्म के गुरु नेताए बने, वो हर राज्य में रहे। राजाओं के पास एक धर्म गुरु होता था जो अब तक भी परंपरा चली आती, अब तो राजा नहीं रहे तो छूट गया। तो अब फिर से बाबा वही राज और धर्म स्थापित कर रहे हैं, हम दोनों सत्ताओं के मालिक बन जाएंगे यदि धर्म की सत्ता हमारे पास होगी और स्वराज अधिकारी हम होंगे। स्वराज अधिकारी चर्चा करेंगे उस पर हम। सत्यता की सत्ता, सत्यता केवल सच बोलने को नहीं कहते, वो तो कलयुग में है भी बहुत कठिन बहुतों के लिए, झूठ का ही कारोबार चलता है सारा, लेकिन सत्य तो सत्य ही होता है। कड़वा होता है या मीठा, कड़वा होता है, बोलो सत्य कड़वा होता है या मीठा, माताएं क्या कहेंगी, सोच रहे हैं कहीं कड़वा होता है कहीं मीठा होता है, नहीं, जो जो परम सत्य है वो अति मीठा है। भगवान परम सत्य है और प्यार का सागर है। बाबा कहा करते हैं, मैं तो जैसे मिठास का पहाड़ हूँ, सुनिए बोल लिया ये। तो जो परम सत्य है वो बहुत स्वीट है। सत्य कड़वा तब होता है जब सत्य के साथ सभ्यता नहीं होती। ये देखो भगवान ने टीच किया है हम सबको, सत्य के साथ अगर सभ्यता है, सत्य को कहने में सभ्यता है, तो सत्य बड़ा सुखदायी, सत्य बहुत कल्याणकारी, सत्य दूसरे के मन को भाने वाला, कड़वे लगने वाला नहीं होगा। सत्य हमेशा, अगर सत्य बात भी कहनी है तो समय देखकर, व्यक्ति को देखकर, उसके भावों को समझकर, उसकी मनोस्थिति को समझकर सत्य बात कहनी चाहिए। एक व्यक्ति गुस्से में है और आप उसे सत्य बात कह दो, क्या होगा, बढ़ जाएगा ना। समय, स्थिति, परिस्थिति, मूड सब देखकर बात कहनी चाहिए, लेकिन यहां सत्यता की शक्ति है। हमें सत्य ज्ञान मिला, हमें आत्मा के सत्य स्वरूप का पता चला, परमात्मा के सत्य स्वरूप का पता चला। ये बातें जो हमारे लिए बहुत साधारण हैं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। किसी को संसार में द्वापुर से पता ही नहीं चल पाया हम आत्माएं परमधाम के वासी हैं। बहुत कम लोग कहते रहे हम भगवान के बच्चे हैं, बाकी तो मैं ही भगवान हूं, कोई कुछ अनेक मत रहे, सत्यता से दूर। इसलिए असत्य कमजोर करता गया धर्म को। अब बाबा ने आकर पुनः सत्य की स्थापना की, सत्य ज्ञान दिया। जो सत्य ज्ञान का अभ्यास करते हैं उनमें सत्यता की शक्ति आ जाती है। सत्य ज्ञान का अभ्यास केवल सुनने से नहीं, मैं आत्मा हूं। हम एक जगह एक प्रोग्राम में देख, सन्यासी आया था, उसका एक छोटा शिष्य भी था, आठवीं क्लास में पढ़ता हूं। बहन जी ने उसे भी कह दिया तुम भी बधाई दे दो, एक बहन समर्पित हुई थी। अब उसको इतना तो आता नहीं था, उसने रटा हुआ था आत्मा के बारे में, गीता में क्या कहा, उपनिषद में क्या कहा, फलाइन जगह क्या कहा, तुलसीदास ने क्या कहा, वो सुनाने लगा। फिर उसके गुरु ने कहा बस बेटा बैठ जाओ। वो तो मैं सोच रहा था इन सबको ये तो रटा दिया, कहां कहां क्या क्या कहा है, पर आत्मा का अभ्यास जीरो। जब सभी आत्माएं हैं, अगर ये अभ्यास होता तो भेदभाव क्यों होता धर्मों में, ये हिंदू, ये मुसलमान, ये फलाना, ये काला, ये गोरा, ये क्यों होता। तो सत्यता अगर थोड़ी बहुत लिखी भी है तो वो प्रैक्टिस में नहीं है। बाबा ने हम सबको बहुत प्रैक्टिस करा दी, और जितना हम प्रैक्टिस करते हैं उतनी हमारी आंतरिक शक्तियां बढ़ती जाती हैं। ठीक है, सभी खूब अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, कम से कम, कम से कम, फिर कह रहा हूं कम से कम दो बार परमधाम में बैठने का अनुभव करें। ज्यादा करेंगे तो बहुत साइलेंस हो जाएगी जीवन में, साइलेंस हमारी शक्ति बन जाएगी, लेकिन दो बार तो जरूर, कोई भी दो बार, जरूरी नहीं अमृत वेला ही करना है, वहां बैठ के नींद भी आ सकती है फिर। इसलिए जब आप समझो हम बिल्कुल चुस्त दुरुस्त हैं तब घर में जाके बैठ जाना। घर में जाके सोने के लिए नहीं बैठना होता, काम करना होता है ना थोड़ा बहुत। वहां काम तो नहीं है परमधाम में, लेकिन वहां की अनुभूति, हम एक्टिव स्थिति में है, वहां डल स्थिति में नहीं, डेड स्थिति में नहीं। ऐसे ही परमात्म सत्य ज्ञान, ऐसे ही चारों युगों का, तीनों कालों का सत्य ज्ञान हमें मिला है। हमें पता चल गया सृष्टि के आदि में हम कौन थे, कौन थे आप सबको पता है, देखो हम देवता थे, उस स्वरूप में रहना। मैं फिर वही कह रहा हूं दो बार अवश्य, मिनिमम कम से कम। तो जिस स्वरूप का हम अभ्यास करेंगे उसके गुण और लक्षण हमारे वर्तमान जीवन में आने लगेंगे। तो अपने पुरुषार्थ की कुछ छोटी प्लानिंग कर लें, प्लानिंग के बिना कोई भी चीज आगे नहीं बढ़ती, दुनिया में भी लौकिक कार्यों में भी प्लानिंग करनी पड़ती है। अब यहां आए मधुबन में प्लानिंग की थी या नहीं, हर चीज की प्लानिंग होती है। चार मेहमान घर में आ रहे हो, प्लानिंग करनी पड़ती है। हम भी कब क्या क्या पुरुषार्थ करेंगे उसकी प्लानिंग कर लो, छोटी, टेंशन भी ना हो उसका, सरलता भी हो जाए। तो पवित्रता और सत्यता ये हैं किसकी शक्ति, धर्म की शक्ति। ये जनरल चीज भी हो गई, यूनिवर्सल, सबके लिए, सब धर्मों के लिए। और ब्राह्मण धर्म के लिए ये बड़ी चीज है, क्योंकि और धर्मों में शुरू से ही बहुत कम लोग पवित्र रहे। कुछ धर्म तो ऐसे है जिसमें पवित्रता का नाम ही नहीं था, बस उनके धर्म पिता पवित्र थे, बाकी दो चार लीडर, बाकी खत्म। लेकिन देवी देवता धर्म में सारे ही पवित्र। द्वापर से जब दूसरे दूसरे धर्म हुए तो हिंदू धर्म में ही सबसे ज्यादा पवित्र आत्माएं, चाहे वो संन्यास के रूप में रही, चाहे गृहस्थ के भी बहुत सुंदर नियम रहे, चार आश्रमों में बांट दिया ग्रस्त को, उसके बाद तुम्हें पवित्र रहना है, 25 साल तक पवित्रता में जीवन व्यतीत करना है। पवित्रता ही ब्रेन को भी शक्तिशाली बनाती है, इसलिए भारत में विद्यार्थी काल में ब्रह्मचर्य का विधान था, क्योंकि पवित्रता की शक्ति ही ब्रेन को, मस्तिष्क को शक्ति प्रदान करती है। आज क्यों पढ़ाई प्रेशर बन गई स्टूडेंट्स के लिए? बहुतों के लिए पढ़ाई प्रेशर है। और कितना पढ़ रहे हैं, स्कूल में जाएंगे आपके बच्चे, कोचिंग पे भेजेंगी माताएं, फटाफट खा पी के कोचिंग पे जाओ, फिर होमवर्क करो। अब माताएं पीछे ही पड़ी रहती हैं, करो करो करो। पढ़ती माताएं पीछे नहीं, ये दोनों सुन रहे हैं क्या कहा जा रहा है। प्रेशर क्यों है? क्योंकि पवित्रता की शक्ति नहीं है। छोटे बच्चों की बात नहीं, बड़ों की भी है। टोटल प्योरिटी की पावर कलयुग के अंत में नष्ट हो गई है, इसलिए ब्रेन पर हर चीज का प्रेशर महसूस होता है। तो हम अपनी धर्म की शक्तियों को बढ़ाएंगे बहुत ज्यादा। सत्यता का नशा भी कौन पढ़ाने आ रहा है रोज, और हमें क्या बना रहा है, क्या बना दिया? मैंने बता दिया था, रिपीट कराना चाहता हूं। क्या बना दिया? मास्टर ज्ञान सागर, कुछ भी जानना बाकी नहीं रहा। बहुत बड़ी चीज है। दुनिया में लोग सारे वेद, दर्शन, उपनिषद, शास्त्र पढ़कर फिर भी सत्य को ढूंढते रहते हैं। आप में से कईयों ने ढूंढा होगा। सब कुछ पढ़ लिख कर भी फिर गाते हैं, हे प्रभु हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो। तो पढ़ के क्या किया भाई? अंधकार गया मैं, और इधर एक बार ज्ञान लेने के बाद अगर कुछ 7 दिन भी ठीक से ज्ञान ले ले, 1 घंटा रोज, तो वो गाएगा नहीं मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, वो प्रभु को धन्यवाद देगा तुमने मुझे प्रकाश में ला दिया, जीवन को एनलाइटेंड कर दिया, प्रकाशित कर दिया। होगा या नहीं? आप सबको ऐसा ही हुआ है। दूसरी सत्ता है स्वराज्य की, स्वयं पर राज करना। स्वयं में कौन कौन आ गए बोलो? हाँ, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां भी और स्थूल भी। बाहर लोग इन्हें ज्ञानेंद्रियां और कर्मेंद्रियां भी कहते हैं। स्पर्श से भी ज्ञान होता है ना, ये चीज गर्म है ठंडी है। सूंघने से भी ज्ञान होता है, इनको भी कर्मेंद्रियां। तो इन पर विजय, स्थूल कर्मेंद्रियों पर विजय सहज है या कठिन? भाई लोग कहने के लिए सहज नहीं, सच सच बताओ, सहज है या कठिन? कहीं सहज कहीं कठिन, इसलिए आधा आधा बोल रहे हैं आप। और मन बुद्धि संस्कारों पर विजय अति कठिन। किसी के संस्कार क्रोध के होते हैं, जीवन भर चलते ही रहते हैं। कब तक चलेंगे? नहीं, आत्मा से ही छोड़ेगी नहीं, वो तो साथ चले जाएंगे। तब तक चलेंगे जब तक उस व्यक्ति को क्रोध पर संपूर्ण विजय पाने का लक्ष्य न हो जाए। हमारे अंदर ताकत है ज्ञान की भी और योग की भी। जिस चीज को हम बदलना चाहें उसे बोलो मुख से सब उसे, बस कमी होती है दृढ़ता की। इस दृढ़ता को हम सबको बढ़ाना है। क्रोध जिसको भी आता हो उस संकल्प कर ले 6 मास में शीतल करना है अपने को, बहुत कुछ हो जाएगा। मन और बुद्धि को वो तो थोड़ा कठिन काम है। मन को रोक देना, मन को रोकेंगे या कुछ और करेंगे, दिशा देंगे। रोकने से वो रुकेगा नहीं। मन को सुंदर विचार देंगे, याद रखेंगे, सुन लो ध्यान से, मन को हमेशा आवश्यकता है, खोज है आनंद की। क्यों लोग टीवी देख रहे, फिल्म देखने जा रहे, व्हाट्सएप देख रहे, फेसबुक देख रहे? आनंद के लिए। फिर देखते देखते वो आनंद गायब हो जाता है, इतना देख लेते हैं ना, ज्यादा खाना खा लें तो ऐसे ही हो गया, ज्यादा देख लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो हम मन को आनंद देने वाले विचार देने लगे हैं। नोट कर लो जिसको पसंद आई हो ये बात, हम मन को आनंदित करने वाले विचार दें तो उसके अनेक विचार समाप्त, उसकी इधर उधर भाग दौड़ समाप्त। बाजार में आप गए हैं, इच्छा हो रही है, ये खरीद लूं, ये खरीद लूं, ये ले लूं, घर में इसकी भी जरूरत है, कल मेहमान आ गए ये भी चाहिए, गिफ्ट भी देनी पड़ेगी, बच्चे आ गए तो होता है ना आवश्यकता। एक है आवश्यकता, दूसरी है इच्छाएं। इच्छाएं बढ़ती जाती हैं, मन उधर भागता है। अगर मन को परमात्म रस मिल जाए तो वो उसमें मगन हो जाएगा, फिर भागेगा नहीं। तो मन को ज्ञान के बल से सुंदर विचार देकर, स्वमान के अभ्यास करके, और जो हमारी बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेज हैं, जैसे 5 स्वरूपों का अभ्यास, हम मन को कंट्रोल करेंगे, मन के मालिक बन जाएंगे। पहले उसे खुश करेंगे, जीतेंगे। जिसको हम जीत लेते हैं वो हमारे अधीन हो जाता है, हम उसके मालिक बन जाएंगे। फिर मन हमें तंग नहीं करेगा, जैसा हम चाहेंगे मन को वैसा चलाएंगे। बुद्धि क्या है? बुद्धि क्या है? बुद्धि एक ही बात पता आपको, दूसरी बात बताओ क्या है बुद्धि? अब दूसरा भी सीख लो, तीसरा भी सीख लो। सबने यही सुना, दीदी ने यही बताया, बुद्धि है निर्णय शक्ति। और भी कुछ तो है? बुद्धि है विवेक शक्ति, जिसमें हम ज्ञान भर रहे हैं। ज्ञान, पवित्रता, वरदान, ये सब कहाँ धारण होते हैं? बुद्धि में। सीख लो सभी, बुद्धि है विवेक शक्ति, बुद्धि है ज्ञान का तीसरा नेत्र, बुद्धि है धारणा शक्ति। ये सब बातें याद रखना आपको। निर्णय तो उसका एक काम है, बुद्धि निर्णय शक्ति नहीं। बुद्धि के द्वारा हम निर्णय करते हैं। बुद्धि है विवेक शक्ति, ज्ञान का तीसरा नेत्र, जिससे हम चारों युगों को देख सकते हैं, तीनों लोकों को देख सकते हैं। देख सकते हैं ना यहीं से परम धाम? किससे देखा? बुद्धि से। ये बुद्धि हमारे नियंत्रण में रहे, अर्थात जब इसको जहां स्थिर करना चाहें वहां कर दें। सुख संवतन में करना चाहते हैं, अपने घर में बैठना चाहते हैं, बाबा से बातें करना चाहते हैं, फरिश्ते स्वरूप का अभ्यास करना चाहते हैं, वो कर लें। यानी हमने सोचा स्वमान में रहेंगे, एक संकल्प किया दूसरा संकल्प स्लिप हो गया, इसको कहेंगे बुद्धि पर नियंत्रण। और ये वो कर सकेंगे, अब बहुत काम की बात, कौन कर सकेंगे? जो अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाएंगे। और स्वच्छ बनाने के लिए व्यर्थ से मुक्त, जो व्यर्थ से मुक्त हो जाए उनकी बुद्धि दिव्य हो जाएगी, स्वच्छ हो जाएगी। दिव्य बुद्धि किसे कहते हैं? जिस बुद्धि में संपूर्ण ज्ञान भरा हो। जो बुद्धि व्यर्थ से मुक्त हो, धारण हो जाता है ना सब, हमने दूसरों की 10 बातें सुनी उल्टी सुलटी, वो धारण हो गई तो दिव्यता खत्म हो गई। जिस बुद्धि में प्योरिटी भरी हो, जिस बुद्धि में वरदान भरे हो, चार चीजें याद रखना, ज्ञान भी, प्योरिटी भी, वरदान भी और बहुत श्रेष्ठ संकल्प भी, तो ये बुद्धि हो जाएगी दिव्य। इससे हम बुद्धि के मालिक बन जाएंगे। और बुद्धि सर्वश्रेष्ठ चीज है, बुद्धि ही मन को भी कंट्रोल करती है। और जैसी बुद्धि का निर्माण अब हम कर लेंगे, वैसी बुद्धि बोलो पूरा कल्प चलेगी। कल्प कल्प नहीं करेंगे, वो अलग बात हुई, वैसी बुद्धि चारों युगों में हमारे साथ रहेगी। अब सब सोच लें, हम बुद्धिमान रहना चाहते हैं हर जन्म में या ढीले डाले? बुद्धिमानी डिग्रियों से नहीं प्राप्त होती, कॉलेजों पढ़ लिए, एमबीए कर लिया, एमटेक कर लिया, पीएचडी कर ली, आपने देखे होंगे कई बहुत पढ़े लिखे लोग, आगे मैं नहीं बोलूंगा, और मैंने ऐसा देखा आंखों से, गांव की बिना पढ़ी लिखी माताएं गांव के फैसले करती हैं, जज हैं, बिना पढ़ी लिखी, और उनके फैसले इतने सुंदर होते हैं, सब खुश हो जाते हैं, जिसका भी झगड़ा हुआ उसी के पास जाते हैं। तो बुद्धिमानी किताबों से नहीं, सद्विवेक से प्राप्त होते। इसलिए बाबा ने कहा मैं तुम्हें आकर बुद्धिमान बनाता हूं। सतयुग में हम पढ़ेंगे क्या? डिग्री होगी एमए की? पीएचडी करेगा कोई? बोलो छोटे लाल, तुमने भी नहीं की। पीएचडी करेगा? आजकल बहुत पीएचडी कर रहे हैं, सस्ते में हो रही है। तुम कर रहे हो किसमें? ये पीएचडी कर रहा है भाई, देखो बहुत अच्छी बात है। पीएचडी माना इसका पूरा अर्थ होता है डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी, किसी भी सब्जेक्ट पे रिसर्च कर लेना, उससे पीएचडी की डिग्री मिलती है। तो देवता डिग्री होल्डर नहीं है, पर सबसे अधिक बुद्धिमान है या नहीं? सरस्वती से ही तो सब बुद्धि मांगते हैं। सरस्वती ने पीएचडी की थी? एमबीए किया? नहीं किया। तो बुद्धिमान बना दिया भगवान ने आकर हमें। आजकल तो जरूरी है, डिग्रियों के बिना तो नौकरी नहीं मिलेगी, वो एक अलग सब्जेक्ट हो गया। अब तीसरी चीज है संस्कार, संस्कारों पर विजय। यानी संस्कारों पर विजय का अर्थ है जो हमारे वर्तमान संस्कार हैं कोई खराब, उसको समाप्त करके जो हमारे आदि और मूल संस्कार हैं उनको धारण कर लेना। और इसकी छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे सभी, बहुत छोटी सी है बड़ी सुखदाई है। एक तो 5 स्वरूपों का अभ्यास रोज करने से बड़ा मजा आएगा आपको, योग भी बहुत अच्छा लगेगा, स्वमान भी हमारा जगेगा, हमें अपने आदि स्वरूप की याद भी बहुत अच्छी रहेगी। हम देवता थे, कैसे थे उसको सामने ले आओ। हम पूज्य थे, कैसा हमारा स्वरूप था उसको इसको सामने ले आओ, ये मैं हूं, ये अभ्यास। 3 मिनट में भी पांच योगा कर सकते हैं, 1 मिनट में भी अपने को स्मृति दिला सकते हैं। दूसरी जो सरल विधि अपनानी है, आत्मा के 7 गुणों को स्वीकार करना, रटना केवल नहीं। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, अब इसको अपने अंदर ले चलो। शांति मेरा अपना निजी संस्कार है, मेरी शांति को मुझसे कोई छीन ही नहीं सकता, शांति मेरी अपनी संपत्ति है। थोड़े विचार भरो अपने चित्त में, बहुत अच्छा रहेगा, तो वो चीज हमारी हो जाएगी। प्रेम, प्रेम देना मेरा संस्कार है, प्रेम से बात करना मेरा संस्कार है। सभी धर्मों की आत्माओं के लिए, प्रकृति के लिए, जीव प्राणियों के लिए मेरे अंदर संपूर्ण प्रेम समाया हुआ है, तो वो चीजें जागृत होने लगेगी। प्योरिटी मेरा संस्कार है, मुझे करना है, बहुत मुश्किल हो रही है, वासनाएं बहुत फोर्स से रहती हैं, ये नहीं। प्योरिटी मेरा अपना संस्कार है, मैं कितने जन्म पवित्र रही, पहले 21 जन्म, उसके बाद भी कई जन्म रहे होंगे, तो पवित्रता हमारे अंदर पूरी तरह से समाई हुई है। तो अपने किसी 1-2 संस्कार को जो दिखाई देते हो बाहर, उसको बदल देना चाहिए। कुछ संस्कार दबे होते हैं, कुछ दिखाई देते हैं। कोई व्यक्ति ज्यादा बोलता हो दिखाई देता है, कोई व्यक्ति बुरा बोलता हो दिखाई देता है, कोई व्यक्ति अपने बोल से, व्यवहार से दूसरों को कष्ट ही देता हो हमेशा, सबको दिखाई देता है, उससे लोग दूर चले जाते हैं। ऐसे 2-3 संस्कार ही हर एक के अंदर होते हैं, ऐसे नहीं सारे खराब हो गए हैं, 2-3 ही होंगे। उन्हें पहचान कर उन्हें बदलने का संकल्प कर लो। बोल है वे, मुझे अब अच्छा बोलना है। बोल से सेवाएं खत्म हो जाती है ना। जो आप में से गीता पाठशालाएं चलाती होंगी बहने या भाई, वो जानते हैं आपका 1 बोल 10 आने वालों को ढीला कर सकता है। होता है कई जगह, निमित्तात्मा का बोल अच्छा नहीं, व्यवहार अच्छा नहीं, सेवा में बहुत मेहनत करते हैं पर पानी फिर जाता है, ऐसे केस होते रहते हैं। तो हमें अपने उस संस्कार को बदल देना है जो या हमें कष्ट देता हो, दूसरों को कष्ट देता हो, या ईश्वरीय सेवा में बाधक हो। हमें कर्मेंद्रियों पर विजय, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कई धर्मों में तो कर्मेंद्रिय जीत बनना ही अंतिम लक्ष्य मान लिया है, अंतिम लक्ष्य नहीं है, उससे भी आगे लक्ष्य हैं। परंतु कर्मेंद्रियों को जीत लेने से काफी अच्छी मनोस्थिति बन जाती है। चित्त को शीतल करना है। मैं एक बात सुना दूं आपको, जिसका अभ्यास हम सब भी करें, ये बात आपने नहीं सुनी होगी, आज सुन लें। और एक ही बार कही बाबा ने, रिपीट नहीं हुई मुरलियों में, साकार मुरली की बात है। शिव बाबा कह रहे थे, मैं इस ब्रह्मा के तन में जब पहली बार आया तो मैंने अपने वाइब्रेशंस इसके शरीर में फैलाकर इसकी कर्मेंद्रियों को शीतल कर दिया। अब ब्रह्मा के लिए वो काम शिव बाबा ने 1 सेकंड में कर दिया, जिसके लिए हमें जीवन लगाना पड़ जाता है। भाग्य है ना ये उस सर्वश्रेष्ठ आत्मा का, भगवान को, क्योंकि उसे अपना रथ बनाना था, ब्रह्मा बनाया उसे, शक्तिशाली बनाया। उसके मुख से अगर गलत शब्द भूल जाए तो कहेंगे ब्रह्मा है या क्या है, या शंकर है विनाशकारी कहेंगे ना लोग। उसके मुख से वरदान निकले, उसके मुख से प्यार बांटा गया, उसकी भावनाएं सबको सुख देने लगी, उसका व्यवहार सबको आकर्षित करने लगा, ऐसा होने लगा सब उनको फॉलो करने लगे। हम भी अभ्यास करेंगे, सभी सीख लें मैं आत्मा परम पवित्र हूँ, मस्तक के बीच मुझ से पवित्रता की गोल्डन किरणें फैलने लगी, ब्रेन में फैल गई, पूरे शरीर में फैल गई, अंग अंग को शीतल करने लगी। 3 मिनट कर लो, ज्यादा नहीं, रोज एक बार, कुछ दिन। गोल्डन किरणें फैल गई ब्रेन में और पूरे शरीर में, अंग अंग शीतल हो रहा है। जो संकल्प हम करेंगे वो शक्तियां उसी ढंग से काम करेंगी। शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए भी सभी अभ्यास कर लिया करें, सीख लें, बहुत अच्छी कला है। मैं आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, मुझसे शक्तियों की लाल किरणें फैलने लगी, ब्रेन भर गया, पूरा शरीर भर गया। ऐसे देखो अपने अंदर, ये पूरा शरीर लाल रंग की किरणों से भर गया शक्तियों से। थोड़ी देर, 1 मिनट भी, 2 मिनट, अनेक रोग समाप्त हो जाएंगे, अनेक अंग पावरफुल हो जाएंगे, इससे इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। बहुत अच्छे अभ्यास हैं। तो हमें लक्ष्य बना लेना है, हमें कर्मेंद्रियों को शीतल करना है, चित्त को शीतल करना है, वाणी को शीतल करना है, नैनों को शीतल, जीव को कंट्रोल, कानों पर नियंत्रण, कान रस लेते हैं इधर उधर की बातें सुनने में, वो रस है बातों का, लेकिन वो आत्मा को नीरस बना देता है। जितनी बातें सुनेंगे योग लगेगा, वही चलेंगी, बैठेंगे योग में, याद आएंगी वो बातें। आज बाबा कह रहे थे ना, बड़ी हंसी खुशी की बात, माया थप्पड़ लगाती है, बताओ आगे क्या कहा था, माया को ऑर्डर है, ये मुझे याद नहीं करते, लगाओ थप्पड़, ये मेरी नहीं सुनते, मारो इन्हें। ये हंसी खुशी की बात है बाबा की। बाबा तो माया को थोड़ा ही ऑर्डर देगा, माया तो माया और क्या है, हमारे कमजोर विचार, हमारी कमजोरियां। माया का अस्तित्व कोई अलग नहीं है, हमारे कमजोर संस्कार हमारे लिए माया है। ये तो बाबा की एक लैंग्वेज है, माया ने तुम्हें बहुत सताया है, माया ने तुम्हें बहुत तंग किया है, माया जैसे तुम हार मान गए हो, ये एक भाषा है, पर वो सब हमारी कमजोरियों का ही नाम है ना। तो हम सभी कर्मेंद्रियों पर विजय पाने को अपना लक्ष्य बना लें। और आज एक और लक्ष्य पक्का कर लें, आप सब मधुबन में हो, ये भूमि सर्वश्रेष्ठ भूमि है, सर्वश्रेष्ठ भूमि, जहाँ ब्रह्मा ने अखंड तपस्या की है, जहाँ जगदम्बा सरस्वती ने गहन तपस्या की है, और बहुत महान आत्माओं ने तपस्या की है। आज से हम सभी के लिए अपने मन में प्रेम और सद्भावनाएं रखेंगे, सद्भावनाएं, प्रेम भी और सद्भावनाएं भी। हमारी सद्भावनाएं दूसरों को दुआएं देना है, कहते हैं ना बाबा दुआएं दो। हमारी शुभ भावनाएं दुआओं का काम करती हैं, और हमें इस सृष्टि में बहुत महान आत्माएं, पूज्य भगवान के साथी पवित्र आत्माएं, हमारी शुभ भावनाएं दूसरों के लिए बोलो छत्र छाया बन जाती हैं। हमारी शुभ भावनाएं और औरों की शुभ भावनाओं में बहुत अंतर है। एक माँ बाप की भी शुभ भावनाएं रहती हैं बच्चों की, वो भी बल देती हैं बच्चों को, इसलिए माँ बाप बच्चों को दुआएं देते रहते हैं, बल मिलता है। और जिन्हें भगवान दुआएं देता हो बहुत बल मिलेगा। केवल हमें कुछ करना है बस, उसकी दुआएं उसका प्यार हमारे साथ है, भूलना नहीं। तो हमारा मन भी सभी के लिए प्यार और शुभ भावनाओं से भरा हो। देख लो अपने को, यहां देख लेना, किसी के लिए नफरत नहीं, किसी से बदले लेने का भाव नहीं, किसी को कष्ट पहुंचाने का, किसी की बनी हुई को बिगाड़ने का कोई संकल्प न हो। हम हैं बिगड़ी को बनाने वाले, भगवान का वही काम, उसके बच्चों का भी वही काम। हम किसी की बनी हुई को बिगाड़ नहीं सकते। तो सभी चेक करेंगे मधुबन भूमि पर, और सवेरे उठकर कल से ही अच्छे स्वमानों का अभ्यास कर लेना। 5-7 स्वमान उठते ही बाबा को गुड मॉर्निंग किया, और मैं इस संसार में बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ, उठते ही भगवान से मिलन हो रहा है, उठते ही भगवान से बातें हो रही हैं, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ऐसे फास्ट गति से न करता, ऐसे मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं विजयी रतन हूँ, मैं विघ्न विनाशक हूँ, मैं सृष्टि पर एक महान आत्मा हूँ। कम से कम 10-12 स्वमान सवेरे उठकर 1-2-3 बार कर लेना, मन कंट्रोल्ड हो जाएगा, उसके बाद योग बहुत अच्छा लगेगा। और ये नहीं कि सवेरे सवेरे चारों धाम की यात्रा कर लेनी है, उसमें क्या है, किसी को 1-1-2-2 मिनट भी नहीं बैठने को मिलता, फायदा तो कुछ होता नहीं। नियम पूरा कर दिया, हाँ झोपड़ी में हो आए बाबा कमरे में हो आए, हुआ कुछ नहीं, वहां जाए तो भक्ति नहीं। जब भी टाइम मिले तब 1-1 धाम चले जाना। ओम शांति।